آئیے دیکھتے ہیں سورت تور کو، بڑی خوبصورت سورت ہے۔ تور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی، اور غار حرا یا کوہ حرا کون سا تھا، جہاں امت مسلمہ کو شریعت ملنے کا آغاز ہوا۔ پہاڑوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی تور اور حرا بنا دے، کہ ہم اس کتاب کو سہار سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ قسم ہے تور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو باریک جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی، اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کے عذاب کا وعدہ واقع ہونے والا ہے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں قیامت۔ اب اگلی صورتوں میں آپ کو یہی انداز دکھے گا، بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کو ثابت کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اس قیامت کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں پہ قیامت ٹوٹے اور ہم ڈھہ جائیں، اور ہم اللہ کی شریعت کو ماننے والے بن جائیں۔ ہوگا کیا اس قیامت کے دن؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے پھر رہے ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ گاڑی بہت تیزی سے چل رہی ہو، کبھی روڈز پہ کسی کے ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر دیکھی ہو، اور اللہ نہ کرے کسی کو ایسا منظر پیش ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تیزی سے گاڑی گھوم رہی ہوتی ہے نا، پھر ایک دم جب گاڑی روکی جائے، کبھی ڈرائیور کو ہینڈ بریک لگانا پڑتا ہے، تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، گاڑی پہ گھوم کے الٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیز چلتی چیز کو آپ نے روکنے کی کوشش کی۔ یہی قیامت ہے۔ اس وقت سورج، چاند، زمین، سب کلو فی فلک یسبحون، سورج یاسین میں پڑھایا ہوں، سب گھوم رہا ہے، تیزی سے یہ دنیا گھوم رہی ہے۔ ایک دم لگے گا کن فیکون، تو جو ہی وہ روکیں گے نا، تو وہ جو چیڑ چیڑ کی آوازیں آتی ہیں نا، وہ ہے قیامت کا دھماکہ۔ اور یہ سب کو جب ہلے گا تو ڈگمگائے گا۔ اب امیجن کریں اس گاڑی کو جس میں لوگ بیٹھے تھے، اور وہ ہلنے لگی اور لوٹنے لگی اور ادھر سے ادھر کلا بازیاں کھائیں، کا اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وہ کون تھے؟ ذرا ڈھونڈتے ہیں ان کو، آئیے ذرا صفات کے آئینے میں۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کھیل کے طور پر آج اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، دین کو کھیل بنانے والے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جس قوم پر بھی عذاب آیا نا، وہ تکذیب کی وجہ سے آیا۔ جب لوگ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، وہ سمجھ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں، موڈی قسم کے لوگ۔ یل اگون، کھیلتے۔ زندگی کے کسی پہلو پر ان پر کتاب کا اثر دکھتا نہیں تھا۔ ایسے لوگ جو تھے وہ دنیا میں اپنے مگن تھے، اتنے میں ان کی پکڑ آ گئی۔ یوم یدعون الی النار جہنم دعا، اس روز انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے چلا جائے گا۔ سوچیے، اس وقت ان سے کہا جائے گا، ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ چکھو مزہ، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کوئی سوجھ نہیں رہا؟ جاب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بتلا دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کرتے رہے۔ یعنی جہنم کسی کو ایسی کریڈٹ کے طور پر نہیں دے دی جائے گی، جہنم سراسر عملوں کا بدلہ، جبکہ جنت عمل بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ اور فضل سے جنت ملے گی، رحمت سے جنت ملے گی، پر فضل اور رحمت کن پہ ہوگا؟ جو متقی ہوں گے۔ اسی لیے اگلی آیتوں کو انجوائے کیجئے گا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، متقی لوگ وہاں باغ اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا بھی رب کے دینے سے ملی تو جنت بھی رب کے دینے سے ملے گی، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اعمال کے سلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متقین علی سرر مصفوفہ، آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دل میں کدورت نہیں ہے نا، خوش ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، इनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में इनके साथ मिला देंगे और इनके अमल में कोई घाटा इनको ना देंगे। और बात यह कि हर नफ्स अपने आमाल के बदले में रहन में रखा हुआ है। हमने इनको हर तरह के फल और गोश्त और जिस चीज को भी इनका जी चाहे खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसको पीने के बाद ना वो बुरी बातें बोलेंगे और ना बद किरदारी करेंगे। और इनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो इन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। वकबलाबादीन, ये लोग आपस में एक दूसरे से कहेंगे, आप सुनिएगा इनकी मसरूफियात क्या थी। और इस सारे पे हम इकट्ठी बात करेंगे क्योंकि ये किरदार हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग दुनिया में जीते थे और इनका दुनिया में जीना अल्लाह की नजरों में कैसा था। फरमाइए, वो लोग थे कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर अपना फजल फरमा दिया और हमें जुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में इसी से दुआएं मांगते थे, वो वाकई बड़ा मुहसिन और रहीम है। इस पूरे पैराग्राफ में हमारे लिए दो तीन बातें गौर की काबिल थी। पहली बात देखिए कि दुनिया में वो डरते हुए गुजर आते थे, दुनिया में बच्चे और औलादें और माल और घर और बीवी बच्चे उनको गाफिल नहीं करते थे। आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में मोमिन ऑन जॉब होता है। कभी आपने डॉक्टर से सुना आई एम ऑन कॉल, कॉल का होती कहते किसी वक्त भी कोई मैसेज आ सकता है और उनको जाना पड़ेगा और एक खास हद से आगे वो बाहर नहीं जा सकते, घर के इर्द गिर्द हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, यहाँ से विद इन फ्यू मिनट्स वो आ सकें उससे बाहर वो नहीं जा सकते। मैंने खुद देखा कि कई दफा हुआ कि घर वाले सारे दावतों शादियों में चले गए, वो नहीं जा रहे क्योंकि वो उस रेंज से बढ़ जाता है जहां तक जाने की इजाजत है। अब आप अपने ऊपर लें, अल्लाह ने मोमिन को कौन सी जॉब दी? कुन तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, शहादत हक की गवाही देने की जॉब है। अब क्या हुआ, सारी जिंदगी काम करता रहा विद आउट एनी वेकेशन, रात को भी जॉब दिन को भी। दुनिया में आप डे टाइम कर लें या इवनिंग कर लें, ये सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं वो वीकडे भी करते हैं वीकेंड भी करते हैं। क्या क्या एम्बिशन है उनका? टू अर्न मनी या चले की जरूरियात पूरी करनी। जो लोग इस तरह करने वाले होते हैं ना, लोग कहते हैं माशाल्लाह दे आर जीनियस, मेरा भाई वो को तो धुन सवार है काम की, वो कारोबारी उनको तो खाने की होश नहीं। लोग खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। फिर आप लोगों से पूछें आज वो अमेरिका गए, आज वो थोड़े दिन बाद वो दुबई में थे, वो उनके बिजनेस ट्रिप चलते हैं ना, वो अपनी मीटिंग्स के लिए जाते हैं, रुके वाह, साथ ही सर ऊंचा होने लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस सारे को ले आइए अपने दीन पे, एम्बिशियस बनिए, वीकडेज भी तो वीकेंड भी, सुबह भी तो शामें भी, 24 आवर एक ही धुन है, और जहां बैठे वहां भी यही धुन सवार है, घर में बैठे मुशवे को कर काम बच्चों के रहे लेकिन दिमाग चल रहा है दीन के लिए, तो क्या अल्लाह जाया करेगा? मोमिन की वेकेशन इतनी हसीन होंगी। देखिए दुनिया में लोग क्या करते हैं, काम करवाते हैं आपसे ना, फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे देते हैं, फिर आपकी सारी जिंदगी की कमाई के हिसाब से वो आपको पे दे देते हैं, फिर आप घर बैठे। मोमिन की रिटायरमेंट इस दुनिया में नहीं होती, इंशाल्लाह जिंदगी दे अल्लाह, जिंदगी के आखिरी दिन तक यही काम करना है। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी जिंदगी में एक भी मोहताजी का दिन ना आए, मेरा बुढ़ापा मेरी अर्जल उम्र मुझे 100 साल भी उम्र दे लेकिन आखिरी दिन तक मैं अपना काम 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 करती रहूं, मेरा दिमाग खराब ना हो, मेरी जुबान बंद ना हो, मेरी आंखें बंद ना हो, मेरी ये नेमतें जो तूने मुझे दी थी इस्तेमाल के लिए ये दुनिया में ना रह जाए। तो जब सारी जिंदगी ऐसी होंगे ना, तो अल्लाह कहते हैं कुल कुल उम्रिम भी माँ कसब रहीन, हर बंदे ने जो कुछ आज दुनिया में किया है वो रहन रखा हुआ है। रहन क्या होता है? मॉर्गेज प्लेजिस, आप अपनी कोई चीज रख के कर्ज ले लेते हैं, कहते अच्छा ये मेरी जूड़ियां रख लो, मुझे 50,000 दे दो, जब दे दूंगी ले लेना। आज हम सब की जाने और माल अल्लाह के यहाँ ब्लेस्ड है। जितना अल्लाह के साथ अपना मामला दुनिया में सीधा करेंगे वहां जाके उतनी वसूली होगी। आप देखिए कि अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है ना, आप इसको अल्लाह के यहाँ प्लेज पे दे दें। कैसा प्लेज? कि अल्लाह ये सब कुछ इस दुनिया में तेरे साथ। और आप देखते हैं कि जो लोग दुनिया में मॉर्गेज लेते हैं, जरा उसको भी इमेजिनेशन में लाइए। मैंने देखा है, सुना है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो मेरे साथ या कि आप में से किसी के साथ, लेकिन मैंने देखा है कि लोग पहले बड़े बड़े कर्जे मंजूर करवाते हैं, लोन लेते हैं, जितना ज्यादा लोन होगा उतनी बाद में किस्त ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना, और जितना कर्ज ज्यादा उतना मॉर्गेज ज्यादा देना पड़ता है। आप डिसाइड कीजिए आपको अल्लाह से कितना बड़ा मॉर्गेज चाहिए, उतनी बड़ी कोशिशें चाहिए होंगी। हज नहीं चलेगा, कर्ज दे दे, ऐसे तो फ्री चेक करते हैं आपकी चीजें, अपने नाम पे लिखाते हैं कि इफ यू कैन पे देन वी कैन टेक दिस। तो मोमिन तो अल्लाह के यहाँ बिकाव है, अल्लाह ने जो हुसन दिया उसको जाके अल्लाह के आगे रखिए, मत इसको बाहर दूसरों को जाके कैश कराए। बड़ा घर, जेवर, शोहर की मोहब्बत, ये हर नेमत जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है। जितना ज्यादा कर्ज लिया होगा उतनी बड़ी किस्त अदा करनी होगी। आज इस दुनिया में रहकर जब हम अल्लाह ताला के साथ इस तरह का मामला करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए इस मामले को आसान कर देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब आप और मैं अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो वो घर पे ऑफ हो चुके होंगे। आप कह लीजिए कि दुनिया के घरों से ज्यादा आखिरत के घर के लिए लोन लेना, और वो यही है, इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन। मोमिन दुनिया में अल्लाह से बेनियाज नहीं रह सकता। हाईलाइट करें, ये बहुत अहम आयत है, I-26 से आगे। और ये पहली बात है कि खौफ किस चीज का था, आखिरत हाथ से छिनने का खौफ था। हर वक्त जवाबदेही का एहसास था। बस दफा हमारे ड्राइंग रूम मैनर्स बड़े खूबसूरत होते हैं, मेहमानों के सामने तो हम बच्चों और मुलाजमों से भी बड़े प्यार से बोलते हैं, लेकिन अकेले में ब्लग बता जाता है। असल बंदे का खुलता है उसके घर वालों से मामला करते हुए, नौकरों के साथ खुलता है। हमारे इखलाक के अव्वलीन हकदार हमारे घर वाले हैं। अपनाइयत के नाम पर हम बैठकर हिरतें करते हैं। हम अपने एक और जुमले को भी इधर देख लीजिए, बस जब हम क्या कहते हैं, घर वालों की ख्वाहिशात के साथ हम दीन नहीं चला सकते। बहुत सारी सिस्टर्स सिर्फ अपने घर में शौहरों और बच्चों का नाम लेकर दीन से रुकती हैं। शौहर नहीं पसंद करते, बच्चे नहीं पसंद करते, मेरे शौहर और देखे तो वो एक बच्चा होता है, इतना सा वो खाता है, लेकिन माँ का दिल पड़ा होता है उसके अंदर। तो याद रखिए, जरूरत से ज्यादा लाड कर लेंगे ना तो कल पकड़े जाएंगे। आप अपने बच्चे को फजर पे उठाते ही नहीं है, क्यों? मुझे बहुत प्यार है। तो क्या हम अपने बच्चों को जहन्नम के शोलों के हवाले करना चाहेंगे? आप अपनी बेटी को किसी अच्छे बुरे पे रोकते ही नहीं है, आप उस बच्ची को उसके ऊपर डाल देते हैं, तो क्या होगा? क्या हम अपने बच्चों को वाकई अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहते हैं? आयतें देखिए कितनी खूबसूरत है जो आपने पढ़ ली, और आपको पता भी नहीं चला कि अल्लाह ने आपको इसमें क्या कह दिया। आयत फाइट क्लाट कीजिए, I-21, वल्लजी नाम अनुवत तबा तुम जुर्रियत हम फी बी ईमान इन अलहक नबी इम जुर्रियत हम व मालत ना हम मिन अमली हम मिन शई। अल्लाह कहते हैं कि माँ बाप के साथ औलादों को मिला देंगे। हदीस में आता है कि जन्नत में जाने वाले जब जन्नत में जाएंगे तो औलादें अपने अमाल की कमी बेशी की वजह से मुख्तलिफ जन्नत में होंगी। उनको ख्वाहिश आएगी कि अल्लाह ताला हम अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं। ये ख्वाहिश सिर्फ उस वक्त उभरेगी जब बच्चे जन्नत में होंगे। अल्लाह ना करे अगर किसी का बच्चा जहन्नुम में पहुंच गया, उसके दिल से बच्चे की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल उसको लगेगा भी नहीं कि ये मेरा बच्चा है। बल्कि इसको यहां समझ लीजिए, एक जन्नत का भी एक बड़ा प्रोटोकॉल है। आप देखिए कि दुनिया में बच्चे कैसे होते हैं, मोस्टली उनको दूसरों के जज्बात की फिक्र नहीं होती, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैयत वाले घर में सब रो रहे होते हैं और बच्चे अंदर खेल रहे होते हैं। आपको भूख लगी है नहीं लगी, बच्चे को खाना होता है। बच्चे के अंदर फीलिंग्स नहीं होती क्योंकि वो खुद गर्ज होता है, हर चीज खुद लेना चाहता है। छोटी सी चीज उससे कोई ले लेता है तो परेशान होता है। जन्नत में जाके हमारी डिजायर्स और ख्वाहिशें बड़ों वाली होंगी। हम बच्चों की तरह छोटे छोटे टॉफी रबर से नहीं खुश हो जाएंगे, वहां तो बड़े बड़े आईपैड आईपॉड और पता नहीं क्या कुछ मांगेंगे, लेकिन फीलिंग्स हमारे अंदर बच्चों वाली आ जाएंगी। ओके, नहीं तो ना सही, तुम रहो मैं खेल रहा हूँ, मुझे खाना, बच्चे को भूख लगती है वो चीखता, उसको नहीं पता माँ खाना खा रही है, जरा सब्र तो कर लो, माँ सो रही है जरा थोड़ा तो बर्दाश्त करो, उनको जो चाहिए उसको फौरन मुंह खोल के रोना शुरू हो जाएंगे। जन्नत में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि एक इंसान को इस तरह की फीलिंग्स आएंगी कि दुनिया में जो कुछ भी किया होगा उस कोशिश को वो वहां पाएगा। बस आप देखिए कि हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे जन्नत में जाए, चाहते हैं ना, हर एक चाहता है। क्या हमारी उसके लिए उतनी कोशिश है जितनी दुनिया के स्कूलों के लिए? मैं देखती हूँ सोते बच्चों की, घुपले घुपले बच्चों की आंखें बंद होती हैं, माएं खुद ही उनके मुंह पे पानी फेरती हैं, हाथ फेरा, जल्दी जल्दी उनको कपड़े पहनाए और सोते को गाड़ी में बिठा के स्कूल छोड़ आती हैं। तो सोता था तो सोने दीजिए, सोता रहे, क्यों आप इसको तंग कर रही हैं? नहीं, इसको तो जाना है, ये क्या डर है, बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, इसकी उम्र से बड़ा हो गया तो फिर इसको स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। तो ये डर बड़ा नेमत वाला है। मुशफिकीन, क्या आखरत के लिए भी यही बात है? इसके लिए फिर आप देखिए कि कभी भी आप अपने बच्चों की हिदायत से मायूस ना हो। आपके बच्चे दूध नहीं पीते, आप उसमें क्या करती हैं, आइसक्रीम की सूरत में खिला देती हैं, मिल्क शेक बनाती हैं, मैकफ्लरी बना दो और इनको आइसक्रीम ले दो और कर दो कि किसी तरह इनके अंदर दूध चला जाए। जब मुझे और आपको अपने बच्चे की फिक्र लग गई है ना, तो बस अब आपने बैठना नहीं है। जैसे पीछे मैंने कहा ना कि अपनी नमाज के पीछे लग जाए, इसी तरह आप अपने बच्चों की इस्लाह के पीछे लग जाए। इसके लिए ये किरदार आपको अल्लाह ने यहाँ दिखा दिया कि कि जितना भी है, ना इतना लाड करें कि नमाजें चली जाएं और ना इतना लाड करें कि जमात चली जाए और वो सोते रहे, और ना दूसरे लाड है कि जिसमें जिंदगी के दूसरे मामले हैं। क्या पता आपके अपने बच्चों के दिलों में ईमान की ऐसी कली खिली हो कि बस आपके कहने की देर है, वो दीन में आपसे आगे बढ़ जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि हम अपने आप को दीन के अंदर रखें। अब इसके बाद नबी सल्लम की इतनी प्यारी दावत के जवाब में उनका इतना बुरा रवैया क्या था कि आपकी बात को सुनी अनसुनी कर देते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़क्किर फ़मा अन्त बिनेमति रब्बिक बिकाहिन, बस नबी आप नसीहत किए जाएं, आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है ना मजनू है। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अय्याम का इंतजार कर रहे हैं? इनसे कहो अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। कि इनकी अक्लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं? या दर हकीकत ये अनाथ में हद से गुजर गए? क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया? असल बात है ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं, इसी शान का एक कलाम बनाकर तो लाएं। क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए? सोचिए, क्या हम में से कोई अल्लाह के पैदा किए के बगैर पैदा हो गया? या ये खुद अपने खालिक हैं? पूछिए, क्या हमने खुद को पैदा किया या जमीन और आसमानों को उन्होंने पैदा किया? असल बात यह कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं या इन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी आ चुकी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की सुनगुन लेते हैं? इनमें से जिसने भी सुनगुन ली हो वो लाए खुली दलील कि अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम लोगों के लिए हैं बेटे। क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़ी हुई चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे हैं? क्या इनके पास गैब के हकायक का इल्म है कि इसकी बिना पर लिख रहे हों? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात तो कुफर करने वालों पर इनकी चाल ही उल्टी पड़ेगी। ना चैलेंजिंग अंदाज है, क्या ये क्या ये क्या तुम क्या, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला इनसे शिर्क की सारी किस्मों की वजूहात पूछ रहा है कि कोई एक रीजन तो बता दो कि आखिर तुम ये सब क्यों करते हो और किस लिए करते हो, कोई रीजन तुम्हें समझ आती है? आम युरीदू ना कईदा, क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? ओके, फल्लज़ीना कफरू हुमुल मकीदून, अगर ये बात है तो कुफर करने वाले पर इनकी चालें खुद ही उल्टी पड़ेंगी। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं ये क्यों नहीं मान रहे? इसलिए कि इन्होंने फैसला पहले कर लिया, मुकदमा बाद में दायर करवाया। मेक बिलीव्स हैं इनके, अपनी मर्जी से इन्होंने जन्नत रखी अपने जहनों में, फिर उसका एक क्राइटेरियन बनाया और फिर उसको अपने लिए ले लिया। याद रखिए, अगर हमें वो जन्नत चाहिए जो अल्लाह ने बनाई है तो उसकी वही रिक्वायरमेंट्स होंगी जो अल्लाह की दी गई। हाँ, ख्वाहिशों की जन्नत में रहते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी की बनाइए, कुछ भी कर लो मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी कौन सी जन्नत? जो आपने बनाई है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें जन्नत की सच्ची तलब लगा दे। अब इसके बाद फिर सूरत का एंड हो रहा है शुरू। फरमाया कि अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अल्लाह पाक इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख ले तो कहेंगे ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। बस नबी ने इनके हाल पर छोड़ दो इनको, लेट देम गो, इन पे जलो भी नहीं, कुड़ो भी नहीं, यहाँ तक कि अपने उस दिन के इंजाम को पहुंच जाए, यहाँ तक कि उस दिन को पहुंच जाए जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी, ना कोई इनकी मदद को आएगा। और इस वक्त के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक अजाब है, मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं। हाईलाइट कीजिए, ये है आज उम्मत मुस्लिमा का मसला, अक्सरुहुम ला यालमून, क्या नहीं जानते, किस चीज का इल्म नहीं कि किस चीज से अल्लाह राजी है, करना क्या था, मकसद जिंदगी नहीं जानते। ये तो पता है लोगों को जन्नत चाहिए, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ये काफी लोग जानते हैं माशाल्लाह, ये अलग बात है कि उसके अंदर भी पूरी तरह अमल ना कर पाए, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो आज मेरा और आपका काम क्या है, खुद भी मकसद हयात को समझें और दूसरे जो लोग इसको भूले हुए उनको भी इसकी फिक्र लगा दें। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ए नबी अपने रब के फैसले के आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाह में हो। कितना प्यारा जुमला है, हमें पता लोग आपकी बात नहीं मानते, सताते हैं, दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं, का डोंट वरी वी आर With you, don't worry. करो क्या, जब तुम उठो तो अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह करो, वमिनल लैली फसब्बिहु वइदबारन नुजूम, और रात को भी इसकी तस्बीह किया करो और सितारे जब पलटते उस वक्त भी। यानी कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस आजमाना है ना तो दीन पर आजमा लो। जितना एक इंसान दीन की बात सुनने के बाद मुतमईन जिंदगी बसर करता है, इतना जिंदगी में बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर भी नहीं पाता। और यहां से ये भी पता चला कि जब लोग अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना नए रूप में, तो डोंट वरी, रातों को अल्लाह से जोड़िए, सुबह शाम की दुआएं पढ़े। और ये जो मिनल लेली और अदवारा नजुम, सुबह शाम की दुआएं भी हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग इवनिंग अस्कार नहीं सुनते? वो हाथ खड़े करें, और पढ़ते भी नहीं। पढ़ें और सुनें, सुन के साथ साथ पढ़ें तो बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन इसको छोड़े नहीं, ये आपकी मेरी सिक्योरिटी है। अपने बच्चों को घर से निकलने ना दें सुबह जब तक कि वो असकार ना करें। एक तो शैतान के शर से बचाएंगे, नफ्स के शर से बचाएंगे, सोसाइटी में जो खराबियां उससे बचाएंगे। तो दुआएं मुसलमान का बहुत बड़ा सहारा होती हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सूरत नजम, पिछली क्या थी? तूर। आगे नजम, आगे आएगी कमर। अब ऐसे लगता है अल्लाह ताला कायनात में जो खूबसूरत चीजें हैं, उसकी सूरत चांद सितारे, उनकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा, मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा। कसम है तारे की जबकि वो गरूब हुआ, तुम्हारा रफीक ना भटका हुआ ना बहका है। रफीक से मुराद नबी सल्लम। लोग नबी सल्लम को भटका हुआ और बहका हुआ क्यों समझते थे? कहते थे ये जो बातें कहते हैं ना, ये तो बहके हुए लोग कहते हैं, ये दुनिया में आज नहीं चलती। भाई मियाँ कहाँ की बातें करते हो, 14वीं सदी है, ये कब होगा? तो लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को बता दो ये ऐसे नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हाईलाइट कीजिए, पूरे कुरान में अगर एक और आयत होती इस बात की दलील में कि ये कुरान अल्लाह ने नबी पर उतारा, एक लफ्ज़ ज़बर ज़ेर भी आपने ज्यादा कम नहीं की, तो ये आयत काफी थी। कैसे? ये तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, ये तो एक वही है जो इस पर नाजिल की जाती है। इसे जबरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी, जो बड़ा साहिब हिकमत है। नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते तो उम्मत अपनी ख्वाहिश से दीन बदल सकती है? एक दीन इस वक्त रसूलों का लाया हुआ और एक ख्वाहिशों का लाया हुआ, जिसके अंदर तब्दीलियां होती हैं। और आज भी जिस दीन के इस हुक्म को आप मॉडिफाइड होता देखेंगे ना, उसके पीछे ख्वाहिश आता है। आज भी लोगों ने नमाजें नहीं बदली, अल्हम्दुलिल्लाह, 5 की बजाय 6 कर लो, 4 कर लो, अल्लाह का शुक्र है, नमाजों में कोई खोट खपट नहीं। आज तक आपने ये नहीं किसी से सुना होगा कि रोजे जो है ना वो 30 की जगह बस 3 ही रख लो साल के एक महीने में, एक दफा महीने में नहीं रखा। हज को नहीं किसी ने बदला, लोगों ने जहां बदला वहां ख्वाहिश की चीजों पे बदला, क्योंकि फैक्ट्स को जो नमाजें बदलेगा वो दीन ही नहीं बदला। कुछ लोगों ने तो वो तो दीन से ही निकल गए, उन्होंने तो अपने फिरके ग्रोह बना के खुद को इस्लाम से अलग ही कर दिया। आम लोग कुरान की सिर्फ उन बातों और इस्लामी लॉज के उन रूल्स को बदलना चाहते हैं जो ख्वाहिशात से टकराते हैं। उनको पता है नमाज नहीं पढ़ते, हम गुनाह करते हैं, लेकिन इस फाइन। लेकिन ये आज का एक बिगड़ा हुआ दिमाग है जो ये कहना शुरू हो गया कि नमाजें तो दिल की हैं और पर्दा तो आंखों का है, और हमारी नमाज और हमारी इबादत तो जी रेस्ट है, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हमसे क्यों नमाजों की बात करते हो? ये गिने हुए लोग हैं। लेकिन याद रखे, ख्वाहिश नफ्स वो बड़ा होता है जिसको पूजा और लोगों ने अल्लाह के दीन को ना माना। और नबी सल्लम भी अगर अपनी ख्वाहिश से बात करते तो वो किताब काबिले कबूल ना होती। कहाँ आज किसी दूसरे की ऐसी लिखी और पढ़ी भी कोई किताब कबूल की जाए। अब इसके बाद मेराज के कुछ मंजर है। याद होगा आपको सूरह बनी इसराइल में हमने बात की थी कि नबी सल्लम का जो सफर मेराज था वो 2 हिस्सों पे था। पहला सफर बैतुल्ला से लेके बैतुल मकदस तक था, ये बाय रोड था, जमीनी सफर था, इसको असरा कहते हैं, रात का जाना। वो हम पढ़ चुके, कहाँ पढ़ चुके? सूरत बनी इसराइल के शुरू में। उसके बाद नबी सल्लम बैतुल मकदस में गए, और जब वहां आप पहुंचे आपने अपने बुराक को एक पत्थर से बांधा। आज भी मौजूद है वेलिंग वॉल के तौर पर वो जगह जहां वो सुराख मौजूद है, जहां अल्लाह के नबी ने अपना बुराक बांधा था। वहां आप गए तो सारे आसमानों जो पुराने अंबिया कराम थे वो वहां जमा थे। अल्लाह कादिर है, नबी सल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई। फिर वहां आपके सामने दूध पेश किया, क्या पानी शराब, आपने उसमें से दूध को कबूल किया। इस सारे प्रोटोकॉल के बाद नबी सल्लम को वापस बुराक पर बिठाया जिब्राइल ने। अब वहां से आप ऊपर गए थे, ये सारे वो मंजर है। कहाँ तक गए थे? सिदरतुल मुंतहा तक गए थे। बात अभी समझ लीजिए कि वहां अल्लाह के नबी उस हद तक पहुंच गए कि जिसके आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी को आगे कर दिया गया, तन्हाई थी। वहां अल्लाह के नबी ने कलमों के चलने की आवाज सुनी। बताइए तकदीर लिखने वाले कलम है। वहां अल्लाह के और नबी के बीच में बिल्कुल थोड़े से हिजाब रह गए थे। कलाम हुआ था, देखा नहीं था। अल्लाह के नबी ने मेराज के मौके पर अल्लाह से वैसे ही कलाम किया था जैसे मूसा से कलाम किया था, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। और वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो 5 नमाजों के तोहफे दिए जो आप मारूफ वाकयात सुनते हैं। اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل توحید کے گناہوں کی معافی اور ہر نیکی کے 10 کم سے کم نمبر اللہ تعالیٰ نے دلوائے، اور وہاں جو ان یوزل چیزیں تھیں، اب آپ اس ترجمے کو اگر آپ امیجینیٹ کریں تو آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں پہنچ جائیں گے. یہ بالکل آپ جنت کے قریب پہنچ چکے تھے فزیکلی، امیجینیشن بھی نہیں ہم جاتے. یاد رکھیے جو منظر وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ اوپر جا کے ہوا تھا، آپ اور میں اس کو نماز میں انجوائے کر سکتے ہیں. حدیث میں کہ نماز مومن کی معراج ہے. نبی کو جو قرب اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے کلام نصیب ہوا ہے معراج پہ، وہ مجھے اور آپ کو جائے نماز پہ ہو سکتا ہے. شرط ایک ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ بھی جانتے ہوں اور ہم اس میں اللہ کے سامنے قوم للہ قانتین کی صورت میں ہوں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان آیتوں کو. فرمایا اللمح شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، جبرائیل کی طرف ہے یہ سارے اشارے، پھر قریب آئے اور اوپر معلق ہو گئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یہ سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. کئی لوگ اس کو اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کیسے مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں. دیکھیے اتنا کلیئر حکم ہے کہ یہ جبرائیل کی باتیں. کچھ لوگ واقع معراج کو یہ ثابت کر دیتے ہیں اس سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی تھی اور آپ نے ان کو دیکھا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ جبرائیل تھے اور انہوں نے وہاں اللہ کے نبی کو وحی دی، پیغام دیا. اور پھر اس نے کیا ہوا؟ فرمایا نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ بلایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے تجاوز کی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بہت کچھ دکھایا گیا جنت اور جہنم کا. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اپنے کیا تم نے کبھی اس لات کو اور اس عزا کو اور ایک تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ یہ معروف دیویاں تھیں جن کو مکہ والے پوچھتے تھے، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں، بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی. حقیقت یہ کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. نوٹ کر لیں، خواہش کی بات سارے قرآن میں کئی جگہ آپ نے اور میں نے پڑھ لی. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خواہشوں سے بچا کر ہدن پہ لگا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین جو ہدایت پر مبنی تھا، جس کے اندر ایک بھی لفظ خواہشوں والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو ماننے والے بن جائیں. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی کہ انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. دنیا و آخرت کا مالک تو اللہ ہے. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، مگر وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے. وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. آپ نوٹ کر رہے ہیں سورت حجرات میں ظن کی بات ہوئی تھی نا، اس ظن کو کثیر من الظن، اور اب ادھر بھی پچھلی سورت میں بھی آپ نے ظن کی بات کی. اٹکل بچو، یہاں بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیز سوچ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوگا. کچھ کہتے ہیں بس دعائیں کرتے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں صرف ہم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو جنت میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں حق آتا ہے وہاں گمان کی بات نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح لکھ لیجئے کہ جیسے آپ کنفرم ٹکٹ رکھیں یا آپ چانس کا ٹکٹ لیں، کیا دونوں صورتوں میں آپ واقعی سفر کریں گے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کریں گے نا، لیکن نارملی آپ دیکھیں جس کے پاس کنفرم ٹکٹ ہوتا ہے اس کے پاس کلیم ہوتا ہے، اس کی ٹکٹ کوئی اور لے نہیں سکتا، اس کی سیٹ لے نہیں کوئی سکتا، الا یہ کہ وہ بہت لیٹ ہو جائے. چانس والے کو آخری وقت تک دھڑکا لگا ہوتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں نے جنت کا کنفرم ٹکٹ لیا یا چانس کا؟ कभी आप किसी से कहे तुम सामान लेके चले जाओ एयरपोर्ट में, देखना टिकट मिल जाएगा। भाई कैसे 30-30 किलो के और 25-25 किलो के सूट के सजा के बना के ढेर भर के जाऊं, पता चले सॉरी नहीं मिलेगा। हम तो एक छोटा सा सफर भी चांस कर नहीं करते, उसके लिए कॉन्फर्मेशन चाहते हैं। और खास तौर पर जब बच्चों के साथ सफर करना हो, तो क्या मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जन्नत का कन्फर्म टिकट ले लिया? ये सवाल है मेरा आपसे और आपका मेरे से। कफारिदम ममतवल्ला पस ए नबी, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। क्या पता चला, जब किसी को दुनिया में इंडल्ज देखें, डूबा हुआ है सर से पांव तक, फिर उस पर ज्यादा मेहनत ना करें, इसलिए कि उस शख्स ने आपकी बात सुननी नहीं। पहले उसको दुनिया के शहर से निकालें, फिर उसके बाद आप उसको दीन की बात बताएं। जालिका मबलुगुहुम मिनल इल्मी, इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है। मबलग कहते हैं बलगा से, यानी सारा इल्म जो हासिल कर रहे हैं उसका एंड क्या है कि दुनिया मिल जाए। मैं सोचती हूँ आज के एजुकेशनल स्टाइल पे ये बात बहुत फिट होती है। सारी जिंदगी जो तालीम लोग हासिल करते हैं ना, उसका एंड क्या है, दुनिया बन जाए। फिर दुनिया तभी बनती है, उतनी बनती है जितनी अल्लाह ताला चाहते हैं। फरमाइना रब्बा का वालम बिमन दल्लन सबीलिही, ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है किसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है, और जमीन आसमान की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को इनके अमल का बदला दे और इन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया अख्तियार किया, बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले से परहेज करते रहे, इल्ला ये कि कुछ कसरजद हो जाए। तेरे रब का दामने मगफरत बहुत वसी है, वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब इसने जमीन से तुमको पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेटों में भी जनीन ही थे, फीटस थे, तब भी अल्लाह आपको जानता था। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है वाकई मुत्तकी कौन है। यह तुमने आयत उम्मा में भी की। इसमें देखिए चंद बातें हैं। पहली बात है कबायर अल इस्म और फवाहिश और लमम, तीन चीजें हैं गुनाहों की। गुनाहों की मुख्तलिफ अकसाम जो होती है ना, उसमें कुछ को तो कबीरा कह दिया, यानी जिसमें जान के पढ़ने वाला तो समझे कि अपने ईमान को खत्म कर लेता है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हम बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते, कभी बचे कभी छोड़ दिया। फवाहिश में वो चीजें सारी आ जाती हैं जो इंसान के रोमांस और उसकी यानी सेक्स के साथ और दुनिया में जो करप्शन है उससे मुतल्लिक है, और फुख चीजों में अल्लाह के साथ ताल्लुक का टूटना भी आ जाता है। लम्हम क्या चीज होती है? थोड़ा सा लम्हम का लफ्ज है कि लम्मा, रोकना, छोटा करना, छोटी छोटी बातें, टंग स्लिप्स। अब मैं पढ़ा रही हूँ, कहीं मेरे से टंग स्लिप हो गई, अल्लाह माफ कर देगा, एडिटिंग वाले उसको निकाल देंगे, अल्लाह भी माफ कर देगा, दैट्स इट। आप कोई काम करने बैठे अल्लाह के लिए निकले, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती छोटी मोटी हो गई, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन याद रखिए कि जब तक हम बड़े गुनाहों से नहीं रुकेंगे, हमारे छोटे गुनाह माफ नहीं होंगे। दुआ कीजिए छोटे बड़े कबीरा सगीरा सबसे माफ कर दे, और ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमारे लिए ये दरवाजे खोल रहा है कि हम अपनी छोटी बड़ी नेकियों को जमा कर सके और उसके बाद अल्लाह तआला के सामने पेश कर दें। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, में क्या बता दिया कि अपनी तारीफें ना किया करो। मैं बड़ी नेक, मेरा खानदान बड़ा नेक, मेरे बच्चे बड़े अच्छे। कुछ सिस्टर्स की तो आदत ही होती है जहां बैठती हैं अपने ही गुनगाने शुरू हो जाती हैं, तस्बीह फिरोती हैं अपने बच्चों के नाम की। इसकी अच्छी बात है, अच्छा हो तो उसकी तारीफ करें, लेकिन जब पड़ोसी में न ले आए, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वो बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। अगली आयतों में बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात है कि इंसान एक नेकी करे और नेकी करते करते रुक जाए तो उसका क्या हाल है। इस दुआ के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें अपनी नेकियों को रोकने या खत्म करने और कम करने की तौफीक ना देना, और आज जो नेकी करें कल की नेकी उससे बड़ी हो और मरते दम तक हम इन नेकियों में चलते ही जाएं। फरमाया अफरैत अल्लज़ी तवल्ला वाता क़लीलन व अकदा, फिर ऐ नबी तुमने उस शख्स को भी देखा जो राहे खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। थोड़ा सा देकर रुक जाना किस बात की अलामत है कि वो वफादार नहीं है? देखिए हकीकी मुत्तकी वो ही है जो आखिर तक जाए। हम अल्लाह के काम करना चाहते हैं, फिर बहुत बड़ी नियतें करते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं क्लासरूम से ना, गाड़ी में बैठते वो नियत थोड़ी सी छोटी हो जाती है, फिर घर जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर देते देते रुक जाते हैं, कहते हैं जरा मशवरा कर लें, बस मशवरा किया तो काम गया, फिर सोच लो ये भी तो है, अपने भी तो काम है, बच्चों के भी, बड़ों के भी, चले देखते हैं फिर क्या होगा। ये अकदा की कैफियत जो है ना, ये बंदे के लिए जहरे कातिल है। नेकी के काम دریاؤں کی طرح ہونے چاہیے، بس بہتے جائیں، آپ نکال لیں گے جتنا نیکی کے کام کے لیے وقت، باقی وقت میں برکت ہو جائے گی. آپ اس کے راستے کی رکاوٹوں کو نکال لیں، بیٹھے رہے. بس ہم بڑی بڑی نیکیوں کے انتظار میں سنبھالتے رہتے جان مال اور وقت. اللہ کہتے اس کلاٹ کو نکالو، تم دیکھنا اس کے پیچھے سے کتنی خیر آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے. ہم سب اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں، کیونکہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے ہمیں ایک چیز کی خبر دیتے ہیں، اور وہ کیا؟ آئندہ علم الغیب فہو یرا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. ہائی لائٹ کریں، اس کو یاد کر لیں. وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم تو وہ تھا جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا. با وفا بننا ہے. پھر ابراہیم کا نام آگے سورت میں، پچھلی سورت میں بھی پڑھا تھا. کوئی سورت شاید ابراہیم کے ذکر سے خالی گئی ہوگی. کیوں؟ انہوں نے وفائیں کی. ہم بے وفائی کر کے ابراہیم والے ٹائٹل تو نہیں پا سکتے. اور کیسے وفا کی؟ جب جس جگہ جس چیز کا تقاضا کیا ابراہیم حاضر تھے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. قلب سلیم لے کر آئے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، جان مال کے تحفے پیش کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں وہ ابراہیم کر گئے، تم بھی کر سکتے ہو، کیونکہ کل ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن تم اس حقیقت کو یاد کرو گے. کیا؟ اللہ تزر وازرت وزر اخرا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میرا آپ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. اپنے گناہوں کے پٹارے خود اٹھانے پڑیں گے، اپنے مال کے حساب خود دینے پڑیں گے. دیکھیے ایک صورت ہے کہ انسان اپنے پیچھے بہت مال چھوڑ کے جائے، کئی خطرے ہیں. اولاد کو ملے گا تو جھگڑے ہوں گے ساتھ، اور وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کو تیار ہیں. پھر پیچھے رہے گا تو حسد ہوگا، اور پیچھے چھٹے گا تو حساب ہوگا، وہاں جا کے لائن میں لگ جائے گا کیا کیا چھوڑ کے آئے ہوں. اس کی برعکس زندگی میں اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اپنے مال میں سے اتنا دے دیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ آپ کی زندگی میں کھڑے ہو جائیں. پتہ چلا کہ آپ نے دنیا سے جانے تک آپ نے اپنے بچوں کو کبھی انڈیپینڈنٹ کیا ہی نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ جب آپ اپنے بچوں کو فل ہینڈ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ وہ خود بھی کمانے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دنیا سے جانے کے قریب ہیں کہ نہیں؟ یہ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قریب ہے نہیں. آپ کہیں گے نہیں میں 70s کی ہو گئی ہوں نا، میں جانے والی ہوں. تو یہاں تو 40s کا بھی کسی کو نہیں پتا، 30s کا بھی نہیں پتا. پھر اسی طرح سے آپ کیا تیاریاں کرتے ہیں کہ کہیں جانے والا ہلکا ہلکا سامان ہلکا کرنے جاتے ہیں نا، یہ سمیٹ دوں، یہ نہیں چاہیے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، چلو پہلے کوئی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ آگے بھیج دوں. انسان کی زندگی میں جب تبدیلیاں آئے نا، آپ کا زندگی کا کوئی ایک رخ بدلے، اللہ نہ کرے شوہر تھے چلے گئے، بچہ تھا چلا گیا، کوئی بھی ایک سے ایک دین آ گیا، جب کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، تب سوچیں اس وقت کی ضرورت کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ آپ سے فیصلے کرائے گا. میں جبھی سائز پہ آتی ہوں اور یہ جو بات آپ سے کر رہی ہوں، مجھے ایک سسٹر یاد آ جاتی ہے، بہت پیاری، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. قرآن کس طرح سینہ کھولتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دن کسی بھی طرح سے پلیٹ فارم دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک گھر ہے تو ہم اسکول کو دینا چاہتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی آتا ہے، کسی کا بھی میں سوچوں گا کہ تو دیکھنا اس کی اولاد نہیں ہونی، تب سوچ رہا ہے کہ اپنی ہاتھ سے دے جاؤں، بعد میں پتا چلا وہ بھائی بہن لے گئے. لیکن میرے لیے حیرت گم کرنے کی وہ بات تھی، بیٹے بیٹیاں سب ہیں. میں پریشان ہو گئی کہ ان کے بچے بھی ہیں سب پہ، پھر بھی یہ دے رہی ہیں. لیکن وہ جو لمبی کہانی، اور یہ ایک کہانی نہیں کئیوں کی باتیں ہیں میرے پاس، اپنی زندگی، وہ کہتے ہیں بچوں کے پاس بہت ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا، آپ نے اپنے بچوں سے پوچھی ہے یہ بات؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کہتے ہیں امی ابو جو مرضی دے دیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ایسی ماں کو جانتی ہوں کہ جب کوئی دین کا کام آتا ہے نا، تو یہ ان کا حصہ ہے، اور دوسرے ہاتھ سے دوسرا پکڑاتے ہیں لفافہ، کہتے ہیں یہ وہ فلاں بیٹے نے بھیجا وہاں سے، میں نے اس کو فون کیا تھا، اچھا امی میرا بھی اتنا ڈلوا. تو وہ تھوڑا نہیں ہوتا، ہماری طرح وہ ہاتھ کا میل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بتیوں کے نوٹ بنا کر ہم اللہ کو پکڑا دیں، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح مجھے حیرت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ دنیا میں دیا تو صدقہ جاریہ، बाद में हुआ तो हिसाब भी और विरासत भी है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लैस लिल इंसानि इल्ला मा सा, इंसान के लिए और कुछ नहीं मगर वो जिसकी उसने कोशिश की। इसको हाईलाइट करें, 3 सेकंड तक सोचें और हम सब सोचें हमारी कोशिशों का रुख किधर है। बच्चे जिनके पहले ही बहुत है उनके लिए और छोड़ना चाहते हैं कि अल्लाह का दीन जो मस्कीन यतीम गरीब तरफ तड़पता हुआ भूखा नंगा दीन, उसको हम कहते हैं छोड़ो, देखेंगे अगले साल की जकात में क्या बचता है। हर एक को जो चीज दिल को लगी होती है ना वही उसका बेबी होता है। हम अपने बच्चों को सारी जिंदगी देते हैं माशाल्लाह और अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन आप सोचिए कभी हमने गिना, कभी ताना दिया? लेकिन जब वो बच्चे, इसके बरक्स आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लें, आप एक वक्त आते उसको भी अपना ही समझते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपने दूसरे बच्चे अडॉप्ट किए और फिर उसको बहुत दे दिया। ठीक है, उनका दिल जुड़ा हुआ था, उनको उन्होंने दे दिया, उनका माल है, आपको मुझे उस पर एतराज करने की कोई बात नहीं है, जिंदगी में जो मर्जी कर दें। खुद से पूछिए कि मेरी जिंदगी में अल्लाह का दीन क्या एक बच्चे की भी हैसियत रखता है? मैं इस वक्त ना तो ज़कात की बात कर रही हूँ, ये हमने अपने लिए देनी है, ये इस वक्त बात बोझ की भी नहीं, ये मोहब्बत की बात पूछ रही हूँ। जिस मेहमान से आपको मोहब्बत होती है आप दिल जान से उसके लिए लगा देते, खिलाते पिलाते सजाते संवारते, वो शर्मिंदा होता है, आप कहते इट्स माई प्लेयर, इट्स माई प्लेयर, इट्स माई प्लेयर। इसके नीचे लिख लीजिए क्या दीन इट्स माई प्लेयर के जिम्मन में आता है? जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा दीन की चीजों को इट्स माई प्लेयर समझ के दे और दीन वाले इट्स ओके आपका मामला जाइए दे दीजिए, अल्लाह आपको दुआ दे, अल्लाह आपके लिए बेहतर करे, इट्स गुड, तब उम्मत बदलेगी। कि मैं किसी पे तनकीद नहीं करने लगी, जैसे लोग होते हैं वैसे हालात होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि पीछे पढ़ पढ़ के गरीबों को लेना पड़ता है दीन के लिए लोगों से। गरीबों से समझ गए आप कौन से गरीब? दीन वाले गरीब, क्योंकि उनको पूरा साल मस्जिदों के बिल भी तो देने हैं, वो फिर पीछे पढ़ के लोगों से लेंगे। जब वो बेचारों ने अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करनी है, लोग क्यों नहीं देते? एक ऐसी जगह थी कहीं, मुझे याद है, ये लंदन की बात है, बेहतरीन हॉल था, यानी कोई उन्होंने किसी चीज का फंड रेजिंग डिनर रखा तो मुझे भी उन्होंने किसी के नाते ऐसे इन्वाइट कर लिया कि थोड़ा सा बीच में उर्दू का आप भी बोल दें, इंग्लिश का क्राउड था कुछ था। इतना खूबसूरत हॉल, इतने अच्छे खाने, प्रोटोकॉल सब कुछ, और सिर्फ लेडीज फंक्शन था, फीमेल था, आई थिंक 300 के करीब लोग होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि खाए पिलाए बातें, उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट भी बड़ी की जो यूथ का स्टाइल होता है, मुझे वो भी कुछ समझ ना आया, इट्स फाइन, होता रहा होता रहा। उसके बाद बिलीव मी जब उन्होंने फंडिंग की बात की ना, ओनली 8,000 pounds उन्होंने टारगेट बनाया। 8,000 यहाँ के कितने होंगे? 10,000 या नहीं नहीं 12,000 लोग, कितना को है? यकीन करें 300 लोगों में वो 8,000 नहीं जमा हो रहा था, औरतें ही थी, सब ग्रुप था छोटा सा, तो उन्होंने अरेंज किया हुआ था किसी के लिए, देवर बेगिंग। साथ हमारे जो साथी हैं वहां वो भी थी, तो मैंने उनसे पूछा आप इजाजत दें अब नूरुल कुरान की तरफ से ना इनको दे दे, चले हमारे हाथ में ना भी इतना। मेरा दिल चाहे कि मैं पकड़ के उनको कहूँ कि $8,000 का चेक पाउंड का दे दो कि जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मिला मुबारक हो, लोगों को छोड़े। मुझे रोना आ रहा था, फिर मैंने बहुत सोचा, बाद में भी सोचा कि आखिर वजह क्या है। खाया खाना बोले सब कुछ दिया, कुरान नहीं है। और मैंने सिर्फ चंद मिनट बात की उनसे, जो भी मैंने करनी थी, कुछ उर्दू का क्राउड था, तो बाद में उन्होंने कहा कि आपने जो बात की है ना उसके बाद हमारा भी दिल चाहा कि हम कुछ दें। याद रखिए, इस कुरान से काट देंगे ना लोगों को तो आपको चंदे मांगने पड़ेंगे। अगर आप चंदा मांगने की बजाय लोगों को इस वक्त में कुरान पढ़ाना शुरू कर देना, तो फिर आप नहीं कहेंगे कि हमें दो, वो आके कहेंगे यस सलून कमाज युनफिकुन, 2 दफा सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह के नबी आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें। सहाबा ऐसे लगता है जेबों में नोट डाल के लाते थे और आके कहते थे अल्लाह के नबी बताएं कहाँ खर्च करें क्या करें। ये है दीन का मिजाज, पैसा कोई दीन वाले को मांगना चाहिए किसी से? हाउ इज इट? ये तो एक सर्विस होती है कि हम ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, अगर आपको अपने माल का कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है मोस्ट वेलकम, आपका अल्लाह से ताल्लुक है, दैट्स इट, हो गई बात, खत्म हो गई बात। जब ये फीलिंग आती है ना हमें आपके माल की जरूरत है, तो लोग डिफेंसिव होते हैं, तो गलती दोनों तरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसी गलतियों से बच जाएं। तो कोशिशें आज जिंदगी में करनी है, हम जिस चीज को अपनी जिंदगी के बाद के लिए चाहते हैं ना वो जिंदगी में करें। मैं कभी अपने हस्बैंड से कहूँ ना कि अच्छा ये चीज मेरे बाद दे दीजिएगा इसको या उसको, ऐसे कभी लाड में बात करता है, कहते आज ही दे दो। मैं कहते आप तो मुझे फौरन ही मार देते, आज ही दे दो, जो कल देना आज ही दे दो। और सच्ची बात है आज ही दे दे। यकूलुल अब्दु माली माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन माल उसका वही है जो उसने खा लिया और खा लिया। खुद पहनी है अच्छा पहन लीजिए, इस्तेमाल कर लें, जाया ना करें, और खा लें अच्छा खा लें, और उसके बाद अपने हाथ से अल्लाह की अदालत अल्लाह की तिजोरियों में जमा करा दें। कहा बाकी तो सब वारिसों का है। क्या होगा जब खुद ही लेके जाने वाले उस वक्त अगर जाके कहेंगे उसको दे दो उसको दे दो, तो वो तो कहा उनको मिलने ही वाला था। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल से माल की मोहब्बत निकाल दे। अल्लाह हमें माल दे पर माल की मोहब्बत ना दे। वन सायहु सौफ युरा, और ये कि इसकी सही अनकरीब देखी जाएगी, इसकी पूरी जजा उसे दी जाएगी, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया। इस आयत पे हंसे भी और रोने की शक्ल भी बनाए। अगर आपने स्माइल दिया ना तो ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और अगर दिल के अंदर आंसू गिर रहे हैं ना अपनी हालत पे, तो अब का वल्ला ही खुशियां और गम सिर्फ अल्लाह देता है। अगर मैं और आप इस सिफत को अल्लाह की समझ जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा उसको खुश करेंगे। हम दुनिया वालों को हंसाने के लिए अल्लाह को नाराज कर दें, और दुनिया वालों के रुलाने के खौफ से अल्लाह को नाराज कर दें, कभी खैर नहीं मिलेगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस बात का यकीन दिला दे कि अगर मुझे खुशी मिलनी है तो अल्लाह ने देनी, और औलाद को भी खुशी अल्लाह ने देनी है। बात जब हम अल्लाह को नाराज कर लेते अपनी औलादों की खुशी के लिए, तो खुशियों गम दोनों उसके हाथ में।